नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नीति वचन नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा।
प्रिय मित्र, प्रभुष्य के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सभी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए कुशल पूर्वक हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का प्रभुष्य के नाम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से नीति वचन नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर शराबियों से घृणा करता है और शराबियों को चेतावनी देता है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इसके साथ साथ और भी ज्ञान की बातों को सीखेंगे और अपने जीवन में आशीषों को ग्रहण करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जिसे आपने फिर से एक बार समय दिया है ताकि हम सब एकजुट होकर आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। यद्यपि कि हम दूर दराज में रहते हैं, गाँव में, पहाड़ों में, शहरों में, लेकिन हम आपके वचन का अध्ययन एक साथ करते हैं। आज भी आप अपने वचन के द्वारा हम सबसे बोलिए और बातचीत कीजिए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन में निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं या किसी बीमार अवस्था में हैं। आप उनके सुधि लीजिए, उन्हें चंगाई और छुटकारा दीजिए, ताकि आज का वचन उनके जीवन के लिए लाभ का कारण बन सके। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम नए विषय पर अध्ययन करेंगे, तो आप मेरे साथ नीति वचन 21 अध्याय निकाल लीजिए। यह अध्याय नीति वचनों का एक महान अध्याय है। नीति वचन 21 उसके एक पद में लिखा है, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। जी हाँ, चाहे पूर्व समय का कोई महापुरुष रहा हो या आने वाले समय में किसी महापुरुष का उदय हो, यह बात है कि परमेश्वर से हटकर वह काम नहीं कर सकता। अनेकों ने सोचा कि वे परमेश्वर के बिना कुछ करके दिखाएंगे। आज का मनुष्य भी यही सोचता है कि परमेश्वर के बिना वह सब कुछ कर सकता है। हम स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के बिना ही जीना चाहते हैं। राजा का मन यहोवा के हाथ में रहता है, ध्यान दीजिए, और वह उसे वैसे ही घुमा देता है जिधर वह चाहता है, न कि राजा, न राजा, न कोई शासक, न ही कोई व्यक्ति परमेश्वर से अलग रहकर कुछ कर सकता है। काश हमारे नेतागण, जो संसार की समस्याओं के समाधान का दावा करने की अपेक्षा परमेश्वर पर निर्भरता का दावा करें, क्योंकि उनके पास वास्तव में समाधान नहीं है। यदि कोई भी ऐसा दावा करता है तो वह गलत प्रतिनिधित्व करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अलग कोई नहीं रह सकता। हमें उस पर अपनी निर्भरता को समझना है। जितने लोग परमेश्वर पर निर्भर होकर कार्य करते हैं वे सफल होते हैं। हमें परमेश्वर पर अपनी निर्भरता की घोषणा करना आवश्यक है। ऐसा तब ही हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन में आ जाएं। यही कारण है कि परमेश्वर के वचन की घोषणा करना महत्वपूर्ण है। नीति वचन 21 अध्याय के 2 पद में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। यहाँ फिर से मनुष्य की अपनी धार्मिकता का प्रश्न आता है। मनुष्य तर्क के आधार पर देखता है, परंतु परमेश्वर परख कर देखता है, वह मन को देखता है। हम बाहरी रूप को संवारते हैं कि बाहर से अच्छे दिखें। हमारे गर्व की बातें हैं। मैं कलीसिया का नियमित सदस्य हूँ, मैं बाइबल शिक्षा भी देता हूँ, मैं समितियों का भी सदस्य हूँ, मैं कलीसिया के कामों में बहुत व्यस्त हूँ, यह सब कुछ सच है, परंतु परमेश्वर मन को देखता है। यर्मिया की पुस्तक 17 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। क्या आपने कभी परमेश्वर के समक्ष अपनी दुर्दशा व्यक्त की है? वह एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, वह हृदय रोग विशेषज्ञ है, वह आपको नया हृदय देता है। वह सबसे पहला है जिसने मनुष्य को नया मन दिया है। वह आपको ऐसा मन देगा जो उसका आज्ञाकारी होगा। मेरे मित्र, यदि आपके हृदय गंदे हो गए हैं तो आप किसी डॉक्टर के पास नहीं, परंतु प्रभु यीशु के पास आइए। वह उसको धोकर साफ करेगा, नया मन नया हृदय आपको देगा, आपके जीवन में अशांति दूर करके शांति प्रदान करेगा। नीति वचन 21 उसके 3 पद में लिखा है, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। यहाँ फिर हमारे सामने एक महान सत्य रखा गया है। किसी धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करना किसी काम का नहीं है। स्मरण रखें कि पुराने नियम में बलिदान मसीह यीशु का प्रतीक थे। इन अनुष्ठानों को निभाने में फरीसियों से अधिक समर्पित कोई भी नहीं था। फरीसी यीशु के युग में धर्म गुरु थे, परंतु यीशु ने उनकी कड़ी आलोचना की, उनका रंग उड़ा दिया। यीशु ने उन्हें चुना पोती कब्र कहा है। कहने का तात्पर्य है कि कब्र में चूना बाहर से ही चमकती है और दिखती है, परंतु उनके भीतर अशुद्धता है। क्यों? क्योंकि धार्मिकता के बिना परमेश्वर को बलि और भेंट ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर का कहना था कि उसे बलिदानों की अपेक्षा दया का मन चाहिए। जी हाँ, वह आज भी आपके जीवन में यही देखना चाहता है, न कि आपका बाहरी रूप। धार्मिक अनुष्ठान आपके विश्वास का प्रदर्शन है, जबकि सच तो यह है कि आप उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। प्रभु यीशु को मन से ग्रहण करने का अर्थ है भले कामों के निमित्त पूर्ण मन परिवर्तन। यह हमारी हड्डियों के भीतर पहुंचता है। परमेश्वर मन को जांचता है। आप इसे ध्यान से गांठ बांध कर रख लें। मैं अपने अध्ययन में पूछे गए प्रश्न को फिर दोहराता हूं। यदि आप मसीही होने के कारण बंदी बनाए जाएं, तो क्या आपको दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त तो प्रमाण होंगे? चढ़ी आंखें, आराधना में आप आते हैं और किसी को देखकर मुंह मोड़ लेते हैं ताकि उससे बात न करना पड़े। मैं एक सभा में गया जहां एक व्यक्ति ऐसा था जिसने मेरे बारे में अशुभ बातें कही थी। उस सभा में उसने ऐसा दिखाया कि जैसे मुझे देखा ही नहीं। चढ़ी आंखें, शायद किसी ने ध्यान न दिया हो, शायद संबंधित व्यक्ति भी समझ न पाया हो, परंतु परमेश्वर ने देखा है। परमेश्वर इसे पाप कहता है। यह शराब पीकर धुत हो जाने के बराबर पाप है। हम सोचते हैं कि शराब पीना बुरा है, परंतु आंखें चढ़ाना बुरा नहीं, परंतु ये दोनों ही पाप हैं। दुष्ट की खेती, यह एक अति रोचक नीति वचन है। आप किसी को खेती करते देख दुआ देते हैं, परमेश्वर उसके परिश्रम का फल उसे दे, परंतु परमेश्वर कहता है कि दुष्ट मनुष्य मन में बुराई रखकर खेती करे या कुछ भी करे, वह उसे ग्रहण योग्य नहीं है। इसका अर्थ है कि पापी परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकता है। आज जैसा कि बहुत सारे लोग दिन भर बुराई करते हैं और रात को परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अन्न और दान पुण्य करते हैं, यह कुछ भी परमेश्वर ग्रहण नहीं कर सकता। वह व्यक्ति अच्छा काम कर ही नहीं सकता। चढ़ी हुई आंखें और घमंडी मन ही नहीं, परमेश्वर से विद्रोह भी पाप है। मेरे विचार में परमेश्वर उद्धार से रहित मनुष्य की भेंट स्वीकार नहीं करता। एक शराब की फैक्ट्री ने एक बार एक स्कूल को, एक कॉलेज को और एक अस्पताल को, अर्थात प्रत्येक को 2.5-2.5 लाख रुपयों का दान दिया। ये मसीही संस्थाएं थी। स्कूल और कॉलेज ने वह पैसा लौटा दिया। उन्होंने सही किया। परमेश्वर ऐसा पैसा काम में नहीं लेता है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 1-3 पद में पौलुस यहूदियों के लिए कहता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। मनुष्य यदि अपनी धार्मिकता दिखाना चाहे तो परमेश्वर उसे पाप कहता है। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य की धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान है। नीति वचन 21:5-7 पद में लिखा है, कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है। उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। परमेश्वर उस धन को काम में ले सकता है जो उचित रीति से उपार्जित किया गया है। धनवान होना पाप नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पैसा आपने कैसे कमाया है। यदि पैसा झूठ बोलकर या लूट कर लाया गया है तो परमेश्वर सुनिश्चित करेगा कि वह आनंद का कारण न हो। क्या आपने ध्यान दिया है कि आज अनेक धनवान मनुष्य खुश नहीं हैं? उनकी आवश्यकता पैसा नहीं है, उनकी आवश्यकता है शांति, उनकी आवश्यकता है मीठी नींद। वे रात भर नहीं सो पाते हैं क्योंकि उनके पैसे जो कमाए हुए हैं गलत तरीके से कमाए गए हैं। मेरे मित्रों, एक अरबी मनुष्य रेगिस्तान में भटक गया था। वह भूख और प्यास से मर रहा था। उसने देखा कि एक कारवां, एक काफिला जा रहा है और उसमें से कुछ गिरा, तो उसने सोचा कि उसमें शायद कुछ खाने या पीने की वस्तु हो। उसने जल्दी से उसे खोला, परंतु गहन निराशा में उसे फेंकते हुए कहा, ओह, इन मोतियों का मैं क्या करूंगा? निसंदेह लाखों करोड़ों लोग हुए हैं जिनके पास धन है, परंतु उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है। उन्हें मोती नहीं, परंतु पानी और भोजन की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर कहता है कि आप धनवान बने, परंतु उससे कोई लाभ ना होगा जब तक कि आप उसे उचित रीति से ना कमाएं और परमेश्वर के महिमान्वयन में उसे काम में ना लाएं। नीति वचन 21 के 8 पद में लिखा है, पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। मेरे मित्रों, आपका जीवन प्रकट करेगा कि आप कैसे मनुष्य हैं। यदि आप परमेश्वर के समक्ष सही हैं, तो आपके जीवन से यह प्रकट होगा। नीति वचन 21 के 9 पद में लिखा है, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। यहाँ एक मनुष्य है जिसे सच्चे आनंद की अनुभूति नहीं थी जब तक कि उसका विवाह नहीं हुआ, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जी हाँ, हमारी कलीसिया का एक सदस्य बार बार जेल जाता था क्योंकि वह बहुत शराब पीता था। मेरे साथ एक सेवानिवृत्त प्रभु के दास थे। हम दोनों हर बार जाकर उसे छुड़ा लाते थे। उस समय उस सेवानिवृत्त प्रभु के दास ने मुझसे जो कहा, वह मैं कभी नहीं भूलता। यदि मेरी पत्नी भी इसकी पत्नी के समान होती तो मैं भी शराब पीने लगता। यह वैसा ही बुरा है जैसा एक स्त्री का गलत व्यक्ति से विवाह करना। मैं और मेरी पत्नी एक दिन किसी स्त्री के लिए दुख मना रहे थे कि उसका विवाह एक शराबी से हुआ है। धर्मशास्त्र में भी इसके उदाहरण हैं। अय्यूब की पत्नी भी उससे प्रसन्न नहीं थी। दाऊद ने शाऊल की पुत्री से विवाह किया था और मेरे विचार में उनका विवाहित जीवन अच्छा नहीं था। उनमें प्रेम नहीं था। परमेश्वर की वाचा का संदूक लाते समय दाऊद आनंद विभोर हो उठा था, जिसके कारण उसकी पत्नी ने उसका ठट्ठा किया था कि उसने वाचा के संदूक के समक्ष नाचकर अपना अपमान किया है। मेरा विश्वास करें कि परमेश्वर के लिए आपका अत्यधिक उत्साह देखकर अनेक लोग आपकी निंदा करेंगे। यदि आपकी पत्नी आपकी निंदा करे तो यह एक त्रासदी है और कई बार मनुष्य बर्दाश्त नहीं करता है। नीति वचन 21 के 11 पद में लिखा है, जब ठट्ठा करने वाले को दंड दिया जाता है तब भोला बुद्धिमान हो जाता है, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। हमें इसका विशेष ध्यान रखना है जिससे कि हम अपने आसपास के लोगों के अनुभव से सीखें। नीति वचन 21 के 13 पद में लिखा है, जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। जी हाँ, अब सच हो या गलत, यह तो परमेश्वर का ही कहना है। मैं तो इसे सच मानता हूं और आज के संसार में इसके जीते जागते उदाहरण भी देखे जाते हैं। नीति वचन 21 के 14 पद में हम पढ़ते हैं, गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है और चुपके से दी हुई घूस से बड़ी जलजलाहट भी थमती है। हारान में वर्षों प्रवास करने के बाद जब याकूब लौट रहा था तब उसके मन में यह भय था कि उसके भाई एसाव के साथ उसने छल किया है और उससे उसका सामना करना होगा। अतः उसने एसाव को प्रसन्न करने के लिए भेंटे भेज दी। उसे इसकी आवश्यकता तो नहीं थी क्योंकि परमेश्वर ने एसाव का मन बदल दिया था, परंतु मनुष्य का यह अनुभव है कि गुप्त भेंट क्रोध को शांत करती है। मनुष्य की धारणा प्रायः यह है कि उदार होने का प्रतिफल अच्छा होगा या किसी को दान देने से मन को शांति मिलती है। इस विषय में किसी ने एक अच्छी सी कविता लिखी है जो इस प्रकार है, यदि मैं चोट खाकर क्षमा कर दूं, क्योंकि बदले की भावना विष है, मुझे अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी, परंतु मसीह की इच्छा तो यह नहीं है। नहीं, मसीह की इच्छा यह नहीं है, क्योंकि हमारे लिए क्षमादान का आधार है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु में हमारे पाप क्षमा किए हैं। यही एक कारण है कि हमें दयालु, उदार मन और क्षमाशील होना है। क्षमा करने का हमारा उद्देश्य हमें मन की शांति प्रदान करना नहीं है। नीति वचन 21 उसके 15 और 16 पद में लिखा है, न्याय का काम करना धर्मी को तो आनंद, परंतु अनर्थकारियों को विनाश ही का कारण जान पड़ता है। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। मेरे विचार में परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि हमें अपराधियों का पुनरुद्वार नहीं करना है, उन्हें नया जन्म पाने की आवश्यकता है, उन्हें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। हमें अपराध के क्षेत्रों में जाकर सुसमाचार प्रचार करना है। परमेश्वर के विचार में हम गलत दिशा से कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए। हम नीति वचन की पुस्तक 21 अध्याय उसके 17 पद में पढ़ते हैं, जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाखमधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। ध्यान दीजिए, आज के समाज में राग रंग से प्रीति रखने वालों की कमी नहीं है, उनकी महिमा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जीवन के सदाचार संबंधित मूल्य बदल गए हैं। एक समय था कि राजाओं के दरबार में जोकर होते थे जिन्हें मूर्ख कहा जाता था, परंतु मेरे विचार में आज भी परमेश्वर की दृष्टि में वही परिदृश्य है। आज के दृष्टिकोण के अनुसार ये लोग माननीय हैं। हम उन्हें टीवी पर प्रशंसा पाते हुए देखते हैं। परमेश्वर कहता है, जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। मैं अनेक कलाकारों को आत्महत्या करते हुए देखता और सुनता हूँ। किसी ऐसे ही व्यक्ति के शब्द हैं, मैं जीवन से ऊब चुका हूँ। किसी और ने कहा, जीवन जीने योग्य नहीं है। एक हास्य कलाकार के अंतिम समय उसके मित्र उसके पास खड़े थे। उसके अंतिम वचन थे, यह हंसी की बात नहीं है, क्योंकि वह अत्यधिक भयभीत था। आज सदाचार विकृत हो गए हैं। टीवी मोआब के जंगल के समान है, उसमें देखने योग्य तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोग भयभीत हैं। नीति वचन 21 के 18 पद में लिखा है, दुष्ट जन धर्मी की छुड़ौती ठहरता है, और विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले दंड भोगते हैं। न्याय में दोषी के लिए दंड अनिवार्य है, क्योंकि निर्दोष का मुक्ति पाना आवश्यक है। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण धर्मी प्रभु यीशु दुष्ट मनुष्यों के लिए छुड़ौती ठहराया गया है। वह धर्मी है और आप और मैं अपराधी हैं, और उसने हमें छुड़ाया है। नीति वचन 21 उसके 22 पद में लिखा है, बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को जिस पर वे भरोसा करते हैं नष्ट करता है। बुद्धि शूरवीरों के बल से अधिक शक्तिशाली है। मनुष्य अजय गढ़ बना सकता है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसमें घुसने का मार्ग खोज लेता है। बेबीलोन का प्राचीन नगर इसका एक उत्तम उदाहरण है। बेलससर शहरपनाह से घिरे नगर में आनंद मना रहा था। वह सोचता था कि बैरी उस तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। उसका राजमहल भी दीवारों से घिरा हुआ था, और उन दीवारों पर सैनिक चौकसी करते थे। परंतु बैरी के सेनापति ने बुद्धि से काम ली और बेबीलोन में प्रवेश करने का मार्ग खोज लिया। बेबीलोन नगर में परात नदी की एक नहर जाती थी, उसने उस नहर का पानी रोक दिया और नगर के मार्ग से नगर में प्रवेश किया और मादी फारसी सेना ने नगर में फैलकर बेबीलोन वासियों को अवसर दिए बिना उसे जीत लिया। नेपोलियन कहता था कि परमेश्वर बड़ी सेना का साथ देता है, परंतु वह गलत था। उसे वाटरलू का युद्ध जीत लेना था क्योंकि वह बुद्धिमान सेना नायक था, परंतु वह चूक गया। उसकी तोपें रेत में फंस गई और उसके घुड़सवार तोपों पर गिर पड़े। इस नीति वचन के कहने का अर्थ है कि मनुष्य धन पर या शक्ति पर निर्भर करता है, परंतु दोनों ही सुरक्षा के लिए व्यर्थ हैं। जी हाँ, सिर्फ एक पर आप निर्भर कर सकते हैं, वह है परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी ओर निहारें, उसके अनुसार चलें और तब निश्चय ही आप अपने जीवन में आशीष प्राप्त करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे और शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है। क्या आप आज भी अशांत हैं? क्या आज आप भी परिवार से दुखित हैं, व्यक्तिगत समस्या और निराशा में डूबे हुए हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी ओर निहारें। वह आपको विजय दिलाएगा, वह आपके साथ खड़ा होगा, आपके साथ आगे बढ़ेगा। तो आइए आज हम अपने जीवन में एक सही निर्णय परमेश्वर के लिए ले लें। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आप एक सही निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगे और निश्चय ही परमेश्वर के उन महान आशीषों को ग्रहण करेंगे। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
हे मेरे दाता, हे मेरे स्वामी, तेरी दया है अपार। कौन है ऐसा जिसने किया हो दुश्मनों से भी प्यार। हे मेरे दाता, हे मेरे स्वामी, तेरी दया है अपार। कौन है ऐसा जिसने किया हो दुश्मनों से भी प्यार। तुझ पे सदा ही मान रखूं, सच्चाई पर सदा चलूं। तुझ पे सदा ही मान रखूं, सच्चाई पर सदा चलूं। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा।